نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير خوش رہنے کے قاعدے سیکرٹس آف ہیپینس آئیے آج کچھ اور خوشی کے قاعدے دیکھتے ہیں اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہوتی یہ ہمارے بالکل اپنے قریب کے معاملات ہوتے ہیں ہمارے سوچنے کے انداز کے ساتھ ہماری خوشی اور ہمارے غم کا بڑا گہرا تعلق ہے ہماری پازیٹیوٹی اور ہماری نیگیٹیوٹی اس پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے اسی طرح ہمارا کھانا پینا ہمارا لائف سٹائل ایک ایک چیز جو ہے وہ ہمارے خوش رہنے یا ہمارے خوش نہ رہنے کے بیچ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ایک چھوٹی سی بات لیجیے کہ جو خوش رہتا ہے وہ پھر خوش رکھتا بھی ہے ہم خود خوش رہ ہی نہیں سکتے جب تک ہم اپنے دوسروں کو اپنے ارد گرد والوں کو خوش رکھ نہ سکیں بہت سارے لوگوں کا ایک گلہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے خوش نہیں ہوتے میں نے کیا کچھ نہیں کر دیا میں نے ان کے لیے یہ کیا میں نے وہ کیا تو ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ زندگی میں ایک چیز کو بیلنس کیجئے ایک چیز کو اپنی زندگی کا موٹو بنا لیجئے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور رب کے دیے ہوئے ہر فیصلے کو دل کی رضا سے ماننا ہے اور اس کی دی ہوئی ذمہ داریاں جو اولاد بیوی بچوں گھر بار کی صورت میں ان کو میں نے اللہ کی حدوں میں رہتے ہوئے ان کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے بس اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے نا تو وہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے رضا ڈال دیتا ہے تو آئیے تھوڑا سا اس چیز کو لے کر چلتے ہیں کہ آج ہم کیا سیکھیں گے اس میں سے آج ہم جو پہلی بات لیں گے وہ کیا ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اچھی طرح سے استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں تو کائنات پہ غور و فکر کیجئے سورج تمہارے لیے بنا ہے اس کی روشنی میں نہاؤ ہوائیں تمہارے لیے چلتی ہیں ان سے لطف اندوز ہو نہریں تمہارے لیے پیدا ہوئی ہیں ان کے پانی سے لذت حاصل کرو پھل تمہارے لیے پیدا ہوئے ہیں انہیں خوشی سے کھاؤ اور اللہ کی تمام عطیات پر اس کی حمد کرو یہ بات ہم نے پیچھے بھی دیکھی تھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیتے ہیں سارا جہاں تیرے لیے اور تو میرے لیے کبھی انسان اپنی ویلیو دیکھنا چاہے نا تو اس کائنات میں اپنے مقام کو پہچان لے خلق لکم ما فی الارض جمیعا آدم اور حوا کے زمین پہ اتارے جانے کے فوراً بعد یہ آیت سورۃ البقرہ میں ہمیں ملتی ہے کہ اب تم دنیا میں جا رہے ہو تو جاؤ ساری دنیا تمہارے لیے بس تم نے میرا بننا ہے پھر اسی طرح اندھا بیچارہ دنیا کو دیکھنے کی بہرا سننے کی لنگڑا چلنے کی اور گنگا بولنے کی تمنا کرتا ہے تم دیکھتے بھی ہو سنتے بھی ہو چلتے اور بولتے بھی ہو یہ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ادھر دے دی کہ کتنی زیادہ آپ اور میں اس چیز پر توجہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لوگوں کی تو وہ خواہش ہے تمنا ہے ہمارے پاس وہ حقیقت ہے تو انجوائے یور تھنگس اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی دنیا میں دیا ہے نا آپ اس کو انجوائے کیجئے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ بہت خوش ہوں گے لوگ بیچارے تمناؤں میں جیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کیا کروں کتنا کروں کیسے کروں اتنی ذمہ داریاں اللہ نے اتنے کام ڈال دیے گھر میں اتنا یہ وہ دس اینڈ دیٹ ہم اکثر انہی شکووں میں پڑے رہتے ہیں کام کر کے تھک گئے گھر بہت بڑا ہے کھانا بہت پکانا پڑتا ہے کتنی دفعہ اور چائے بناؤں میاں صاحب کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے نہیں بولیے الحمدللہ جب اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو آخر کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر چیز ہوگی نا تو لہٰذا اپنے لیے گول بنائیے کہ جو نعمتیں ہیں اس کو استعمال کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی دے گا یہ نہ سمجھو کہ زندگی کسی کے لیے کامل ہو گئی کسی کے پاس گھر ہے کار نہیں کسی کے پاس بیوی ہے تو کام نہیں ہے کسی کو کھانے کی خواہش ہے تو کھانا نہیں ہے کسی کے پاس کھانے کی افراط ہے لیکن کھانے سے منع کر دیا گیا تو پھر اگر آپ کی بھی زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی کمی ہے تو الحمدللہ کیجئے اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو آپ کا دل شکر سے بھرے گا دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر دیکھیے دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے دیکھیے مسجد آخرت کا بازار ہے کتاب عمر بھر کی دوست ہے عمل صالح قبر کا مؤنث ہوگا حسن خلق شرف کا تاج ہے کرم سب سے خوبصورت کپڑا ہے یعنی مسجدوں سے جا کر آخرت کی چیزیں خریدا کریں دعا کریں کہ ہمارے مردوں کے دل مسجدوں میں لگ جائیں बाज़ारों में जाकर कमाते हैं, रोज़ी रोटी लेके आते हैं बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए। इसी तरह कुछ लोगों के दिल अल्लाह ने मस्जिदों में टिकाए होते हैं ताकि वहाँ से फिर खौफ खुदा और तकवा लेकर आएँ, ताकि फिर अपने साथ साथ अपने साथ वालों को भी बांटें। ऐसे लोगों की कदर करने की ज़रूरत है। और किताब से तो इंसान का ताल्लुक छूट ही नहीं सकता। कब्र के बयान में ये बात पड़ी थी कि अमल सवाले कब्र का मुअन्निस होगा। मुअन्निस कहते हैं उंस दिलाने वाला, यानी इंसान तन्हाई में खुश नहीं होता, इसलिए उसका दिल चाहता है कि कोई मेरे पास हो। तो कब्र की तन्हाई अल्लाह बांटेगा आपके अच्छे आमाल की वजह से। नेक शख्स के पास तो इतनी नेकियां होंगी कि उसके चारों तरफ एक किस्म की बाढ़ लग जाएगी, यानी कोई अजाब उस तक आएगा नहीं। इसके बरक्स काफिर और फाजिर के पास नेकियां नहीं होंगी और वो चीज़ें फिर उसको अजाब कब्र से नहीं बचा सकेंगी जो उसने ज़िंदगी भर की होंगी। अच्छा अखलाक रखिए, इज़्ज़त मिलेगी। और करम कीजिए, करम कहते हैं जनरस, करुमा, करम। अंगूर की बेल को कहते हैं, अरब लोग इसकी बड़ी इज्जत करते थे क्योंकि अक्सर चीज़ें इससे बनती हैं। मुल्हिदीन की किताबें ना पढ़ो, इनमें वो गंदगी है जो दिल को मैला कर देती है, वो जहर है जो रूह को मार डालता है, वो दाग है जो ज़मीर को मुर्दा कर देता है। इन सब का इलाज इल्मे वही है जिससे रूह साफ शफाफ और बीमारी ख़त्म होती है। आपको ऐसे समझ लीजिए कि फिक्शन ना पढ़िए, ज़ाया होगी ज़िंदगी। अब फिक्शन में अगर पढ़ेंगे तो नावल, डाइजेस्ट और बेकार चीज़ें ऐसी जिसमें सिर्फ रोमानवी बातें हैं और फैंटेसी वर्ल्ड में आपको ले जाते हैं। पढ़िए तो साफ़ सुथरा पढ़िए, सुनिए तो अच्छी साफ़ चीज़ें सुनिए, देखिए तो अच्छी चीज़ें देखिए, क्योंकि अल्लाह ने आंखें कान जो दिए हैं इसका हिसाब भी होगा। और फिर अगली बात जो बहुत ही प्यारी बात है, बहुत सारे लोगों के खुश ना रहने की एक बहुत बड़ी वजह गुस्से की हालत में किए हुए फैसले होते हैं। तो गुस्से की हालत में कोई फैसला न कीजिए क्योंकि बाद में नदामत होगी। गज़बनाक आदमी सवाब से दूर जा पड़ता है। सवाब कहते हैं तीर का ठिकाने पे लगना, इसी से लफ्ज़ मुसीबत भी है। साइबुर राय शख्स इसी से है, यानी उसकी राय बड़ी सीधी है। जैसे तीर निशाने पे पड़ता है ना, तो उस बंदे की राय बड़ी अच्छी होती है, वो गौर व फिक्र से काम नहीं ले पाता। ठीक है, तो क्या पता चला? गुस्सा आ जाए तो अपने आप को खामोश कर लीजिए, ना बोलिए, ना लिखिए, ना कोई कमेंट दीजिए। इंग्लिश का एक मुहावरा बहुत अरसा पहले से पढ़ा हुआ, कई दफ़ा याद आता है, जिसका खुलासा क्या है कि जो गुस्से में खड़ा होता है वो शर्मिंदगी के साथ बैठता है। हु स्टैंड्स इन एंगर सेट्स विथ रिग्रेट। आप खुद देखिए बर्तन कब टूटे आखिर में, आखिरी लड़ाई घर में क्यों हुई। नाउज़ु बिल्लाह कभी किसी के मुंह से बात ही ना निकल गई शौहर के मुंह से कि जाओ तुम मेरे लिए हराम हो। इवन आप देखिए तलाक जैसा कठिन फैसला, उसको भी सोच समझ के करने का मौका दिया। मुर्गी भी ज़िबा करो तो आराम से करो, ताकि उसकी गर्दन जिस्म से कटे तो उससे पहले उसके जिस्म का खून निकला हो। तो याद रखिएगा, गुस्सा क्या है? आपकी ताकत है। आप इसको अपने हक में इस्तेमाल कर लें या अपने खिलाफ इस्तेमाल कीजिए। तो आज से अपने लिए गोल बनाइए, गुस्सा तो आएगा, ये नहीं हो सकता आपको नहीं आए। बच्चों को भी आता है, बड़ों को भी आता है। कभी खिलाफ शरीयत चीज़ों पे भी गुस्सा करके देखिए, तो गुस्से की तो कीमत ही है कि आप गलत चीज़ों को देखें और उस पर आपको गुस्सा आने लगे। ठीक है, लेकिन गुस्से की हालत में कोई फैसला ना करें और किसी को फोर्स भी ना किया करें। नो राइट, नो, अभी फौरन, जल्दी से पहले मुझे भी बताएं, मुझे भी फैसला चाहिए। यस नो, यस नो, नहीं, ये टोन एक ईमान वाले की नहीं होती। तो लिहाजा रिलैक्स रहिए, हमारा मामला सिर्फ दुनिया का नहीं है, हम दुनिया के बाद आखिरत के भी मुकल्लफ हैं। अल्लाह ताला ने आपसे मेरे से इस दुनिया के एक एक छोटे छोटे और बड़े बड़े काम का हिसाब लेना है। तो गुस्से को कूल काम रहकर ठंडा कीजिए। फिर अगली टिप लीजिए, अगला राज ले लीजिए। हुज़न से खोई चीज़ वापस नहीं आती, खौफ से मुस्तकबिल नहीं बनता, पलक से कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि अच्छा दिल और मुतमईन कल्ब ही सआदत के बाजू हैं। बहुत ही प्यारी बात है। अब देखिए, बाज़ लोग माजी की किसी भी गलती या माजी में किए हुए किसी भी गलत काम पे दुखते रहते हैं, दुखी होते हैं। मैंने ये रिश्ता क्यों किया, ये कारोबार क्यों किया, मैंने फलां को कर्ज क्यों दिया, मैंने फलां जगह किसी की गवाही क्यों दी। मिसाल ले लीजिए, आपके मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मामलात आते हैं कि जिसमें हम पिछली ज़िंदगी पे अफसोस करते दिखते हैं। क्या आपके मेरे अफसोस करने से वो चीज़ वापस आ जाएगी? कभी आई आज तक? नहीं आती। कभी आपने ज़िंदगी के पहिए को बैकवर्ड तो नहीं किया? कभी आपने रिवर्स गियर भी लगाया तो आप देखते हैं कि पहिए सीधे चल रहे होते हैं। आपका मेरा काम क्या है? पिछली ज़िंदगी में किए हुए गलत फ़ैसलों से सबक लीजिए। اپنے آپ کو اس چیز میں رکھیے کہ میں نے دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی. لا یلدغ مومن من حجر واحد, مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. بالکل اسی طرح سے آپ پچھلے فیصلوں سے سبق تو لیجئے لیکن غم نہ کیجئے, ورنہ آپ اگلی زندگی میں ایک اور غلط فیصلہ کریں گے. کیونکہ دیکھیے, غصے میں جو شخص ہے یا دکھ میں ہے یا آج کے دور میں آپ کہہ لیجئے کہ سٹریسڈ ہے یا ٹینشن میں ہے, تو وہ شخص جو ہے نا وہ بہت ہی بیچارہ ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کو کسی بھی ایسی چیز میں ڈال کر دکھی کر دینا, مزید اس کو کسی پریشانی پہ ڈال دینا, یہ اصل میں پھر اس کو مزید غلط چیزوں میں لے جانا ہے. تو کوڈ ورڈ کیا سیکھا ہم نے, کہ غصے اور حزن اور غم منانے سے بچنا ہے, کچھ واپس نہیں آئے گا. آپ کی صحت چلی جائے گی, آپ کی کچھ اور چیزیں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی, اور دل کا اطمینان بھی رخصت ہو جائے گا. پھر اگلا سیکرٹ لیجئے کہ لوگوں سے اپنے احترام کا مطالبہ نہ کرو جب تک تم ان کا احترام نہ کرو. اپنی ناکامی پر ان کو دوش نہ دو, اپنے آپ کو دو. ان سے اکرام کرانا ہو تو خود اپنا اکرام کرو. بہت ہی پیاری بات ہے. ہمارے کلچر میں ایک محاورہ بولتے ہیں, اپنی عزت اپنے ہاتھ. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں اس مفہوم پہ یہ لفظ آتا ہے, والحرمات قصاص, کہ عزتیں تو برابری کی ہوتی ہیں. جس کو آپ کہتے ہیں کہ عزت کرو, عزت کرا لو. جو شخص اپنی عزت خود نہیں کرتا, دوسرے اس کی عزت نہیں کریں گے. اور آپ دوسروں سے یہ کہ میری عزت کرو, میری عزت نہیں کرتے, تو آپ خود تو ایسے کام کر رہے ہیں کہ آپ کی عزت نہیں کی جا سکتی. آپ جس ٹون میں بات کر رہے ہیں, کہ اس ٹون میں بات سن کر کوئی عزت کرے گا؟ آپ کا جو کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کا یا اس سے ڈیل کرنے کا جو طریقہ ہے, کیا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ بس آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم اپنے بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری عزت نہیں کرتے, ان کو عزت نہیں, تمیز نہیں, بڑے چھوٹے کا احترام نہیں, لیکن ہم کیا اٹھتے بیٹھتے بچوں کو نہیں برا کہہ رہے ہوتے؟ اوئے توئے, ابے ادھر آ, سیدھے ہو جاؤ. ہاں, یہ تو ٹون بچہ بھی نہیں پسند کرتا. گھر کے ملازم آپ کہتے ہیں کہ وہ عزت نہیں کرتے, آپ ان کی عزت کتنی کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے, دوسروں کو کر کے دکھائیے. ایسے بولتے ہیں, ایسے بات کرتے ہیں, تو جب آپ بچے کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں گے, دیکھیں گے بچہ بھی ویسی بات کرتا ہے. اور یہی چیز پھر ہر ایک کے ساتھ ہے. جھونپڑے والے کو اپنے جھونپڑے پر خوش رہنا چاہیے. اسے معلوم ہی ہوگا کہ محلات ٹوٹ جائیں گے. پرانے کپڑے پہننے والے کو اپنے کپڑوں پر قناعت کرنی چاہیے جب انہیں پتہ چلے کہ دیبا و حریر بھی پھٹ جائیں گے. بہت ہی بڑی بات ہے. دیکھیے, جھونپڑا ہو یا محل, ایک دن دونوں ہی ٹوٹ جائیں گے. بلکہ جھونپڑا ٹوٹے گا تو اتنا ملبہ نہیں گرے گا, اتنا میس نہیں ہوگا جتنا محل کے ٹوٹنے پہ ہوگا. تو پھر آپ جھونپڑے میں رہیں یا محل میں رہیں, زیادہ سیکیور کون ہے, جھونپڑے والا؟ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پرانے کپڑے ہیں, آپ کہتے ہیں پرانے کپڑے ہیں, نئے ہے ہی کوئی نہیں. تو جو ریشم پہنیں گے, پیور سلک پہنیں گے, وہ بھی تو پھٹ ہی جائے گا نا. بلکہ پرانا کپڑا جو بہت ہی زیادہ ایزی گوئنگ ہو, وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے نئے کپڑے کی نسبت. اللہ کرے کہ دل ایسے بن جائیں, تو آپ دیکھیے کہ ہمارے تو غم ختم ہو, ہماری تو ضرورتیں ہی ختم ہو جائیں. ہم پتہ نہیں کن کن چیزوں کی ضرورتوں میں روتے رہتے ہیں, اور اچھے خاصے لوگوں کو بدمزہ کر دیتے ہیں. پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, لیکن پیسے پیسے پیسے. کپڑوں کی ضرورت بھی نہیں, پھر کپڑے کپڑے. کوئی چیز ہے اس کی ضرورت ہے بھی نہیں, ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہ سی. لیکن لڑائی جھگڑے نہ سمجھیں وہ لوگ جو صرف چیزوں کی وجہ سے انسانوں سے جھگڑا کریں اور ان کے دل توڑ دیں. جو نفس کے پیچھے چلے گا, تو چونکہ اس کی خواہشات کی کوئی حد نہیں, وہ دھوکے باز نفسانیت پر ابھارے گا. اس لیے ایسا آدمی رنج کا شکار ہوگا, معاملات ضائع ہوں گے اور ذہن منتشر رہے گا. کیا پتا چلا نفس کیا ہے؟ 13 پارے کی پہلی آیت لیجئے, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. میں اپنے نفس کو بے گناہ قرار نہیں دیتا, میرا نفس تو, یا ہر ایک کا نفس جو ہے, وہ تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے. تو نفس کے پیچھے چلنے والے خواہش پرست ہو جاتے ہیں, اور جب خواہشیں پوری نہیں ہوتی نا, تو پھر دھوکے دینا شروع ہو جاتے ہیں. نفسانیت پڑ جاتی ہے, یعنی نفسی نفسی, جو بائے ہک اور نہیں تو بائے کروک. سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکل رہا, تو پھر ٹیڑھی سے نکالنا چاہیں گے. ایسا بندہ ہمیشہ رنج کا شکار ہوگا, پھر اس کے معاملات خراب ہوں گے, اس کا ذہن منتشر رہے گا. اے وہ شخص جس نے بیٹا کھو دیا ہے, تمہیں جنت میں قصر حمد ملے گا. جس سے دنیا کا حصہ کھو جائے, اس کا حصہ عدن کے باغات میں منتظر ہے. حدیث ہے, جس کا پیارا کوئی اللہ لے لے اور وہ اس پہ الحمدللہ کہہ دے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا کرے گا؟ جنت میں بیت الحمد دے گا. تو کیا ملا؟ دنیا میں بیٹا گیا نا, اور بیٹے کی جگہ اللہ نہ کرے کوئی اور بھی جائے, تو آپ الحمد کہہ سکتے ہیں. आज तो हम किसी के मरने की खबर सुन के क्या अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो शायद लोग आपको अपना दुश्मन करार दे दें कि अच्छा फलाँ मर गया और आप अल्लाह की तारीफ़ें करें, क्योंकि हमारा तसव्वुर शुक्र का और इन लफ्ज़ों का बहुत ही महदूद है। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को लेकर आपने, मैंने जिन चीज़ों को अपने लिए लेना है वो क्या है कि आपका मेरा ज़िंदगी भर का मामला कैसा हो, हर बात पर राज़ी रहिए। रब ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने लिया अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह, दे के छीन लिया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? इसलिए कि औकात ही यही है, औकात ही इतनी है। आपकी मेरी इससे बड़ी पोजीशन नहीं है, बस आपको मुझे बस एक ही काम करना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक और रास लीजिए कि परिंदे को रोज़ी घोंसले में नहीं मिल जाती, शेर की खुराक कछार में नहीं पहुंचती, चींटी का खाना घर में नहीं आता, ये सब गिज़ा की तलब में निकलते और मेहनत करते हैं। इन ही की तरह तलब करो और मेहनत करो तभी पाओगे। क्या पता चला? एकल व तवक्कल। घर से निकलिए, कोशिश कीजिए रिस्क कमाने की, फिर जो मिल गया उस पर राज़ी रहिए। आप घर में बिस्तर पे आराम फरमा रहे हैं और आप कहते हैं कि रोज़ी कोई नहीं, रोटी कोई नहीं, भूखे मर गए, तो ये नहीं हो सकता। मुराद क्या है कि हरकत में बरकत है। इवन आप देखिए कि परिंदा कितना लाइट वेटेड है, उड़ने की कैफियत है, उसको भी घर से निकलना ही पड़ेगा। शेर बहुत बड़ा एक नाम है, इतने ताकतवर को भी कछार में बैठे हुए रिस्क नहीं मिलता, उसको निकलना पड़ता है, शिकार की तलाश में जाता है। और एक मामूली सी चींटी जो किसी के पाँव में आ जाए तो किसी को पता भी ना चले, उसको भी आटा लेने के लिए घर से निकलना पड़ता है। तो बात तो वाजे है, फिर आपको मुझे कैसे घर बैठे सब कुछ मिल जाए। जिंदगी का एक खुलासा रखिए, हरकत करेंगे तो बरकत अल्लाह देगा। सुस्त लोगों की दुनिया में कोई जगह नहीं, और इसी तरह बाकी चीज़। और फिर बात यही है कि मेहनत करेंगे तभी पाएंगे। मेहनत पूरी कीजिए, नताइज अल्लाह पे डाल दीजिए। फिर एक जुमला जो सूरत मुनाफिकून में खोटे दिल वालों के लिए कुरान में आता है, वो हर आवाज़ को अपने खिलाफ ही समझते हैं, मौत से पहले ही मर जाते हैं, हर मुसीबत और हादसे से अंदेशा नाक रहते हैं, हर आवाज़ और हरकत पर खौफ करते हैं, क्योंकि इनके दिल खाली और नफूस पर गंदा होते हैं। हमारे यहाँ इस पर एक मुहावरा बोला जाता है, खाली बर्तन ज़्यादा खनकता। जिनके अंदर ईमान का वज़न नहीं है ना, सच्चाई नहीं है, वो लोग हमेशा चीज़ों को उल्टा समझेंगे। बात किसी की हो रही हो, वो कहते हैं हमारे खिलाफ़ बात की, मेरी ही बात की होगी, ये मुझे ही सुनाया जा रहा है, ये मेरी तरफ ही इशारा था, ये कहा तो बेटी को जा रहा है लेकिन सुनाया बहू को जा रहा है। अल्लाह कहते हैं ऐसे खोटे दिल वाले वो तो मौत से पहले ही मरते हैं, क्योंकि रोज़ मरते हैं रोज़ जीते हैं। हर दिन तो उनको कई तरफ से ऐसी आवाज़ें उनके बकौल उनके ख़िलाफ़ मिलती हैं। ज़रा सी मुसीबत आई, ज़रा सा कोई हादसा आया, अंदेशों में पड़ जाते हैं। ज़रा सी कोई आवाज़ उठी मदीना की गलियों में, ज़रा सी कोई आवाज़ उठती थी खौफज़दा हो जाते थे, क्योंकि दिल खाली था। तो दिल को ईमान से भरिए, अल्लाह की मोहब्बत से भरिए, नफ्स को कभी खाली ना छोड़ें। खाली जगह पे तो शैतान भी आ जाते हैं, तो क्या पता चला कि अपने आप को बावजन बनाना है। अल्लाह ताला जिस हाल में रखे इसका शुक्र अदा करो, क्योंकि वही तुम्हारे बारे में जानता है। अगर बीमार हो जाओ तो ये ना कहो, काश मैं बीमार ना होता। गरीब हो जाओ तो ये ना कहो, काश मैं सर्वतमंद होता। तो क्या पता चला कि लफ्ज़ काश निकाल दीजिए अपनी डिक्शनरियों में से, क्योंकि लव का लफ्ज़ यानी काश इंसान के लिए हसरतों का दरवाज़ा खोल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, भाई कैसे अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत कैसी है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ खाया अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ मिला अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम कैसे अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन की डिक्शनरी अल्हम्दुलिल्लाह से भरी हो। इसमें बात तो वैसे भी आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, अल्हम्द कहना मीज़ान को भर देगा। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे। कल हमारे नामे अमाल में लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से हो, और ये कब होगा? जब दिल दिमाग में ला इलाहा इल्लल्लाह रासिख हो चुका होगा, जमा हुआ होगा। फिर एक और रास है कि हो सकता है कि सफ़र से तुम्हारी ताखीर में खैर हो, और बीवी से महरूमी में बरकत हो, और किसी नौकरी के छिन जाने में भी बरकत हो। वही जानता है, तुम नहीं जानते। हर वक्त हालात आपकी मेरी मर्ज़ी के नहीं रहेंगे, ऐसी है ना। आप चाहते हैं कि 5 बजे इधर पहुंचे कोई? नहीं पहुंचेगा, 5 5 हो सकते हैं, 5 10 होंगे, कोई बात नहीं, बी फ्लैक्सिबल। 5 कहने का मतलब ये था कि 5 एक क्राइटीरियन है, पूरी कोशिश करो, 2 4 मिनट पहले भी पहुंच सकते हो, 2 4 मिनट बाद में भी होंगे। मोमिन का मिजाज बड़ा रिलैक्सिंग होता है, बात बात पे गुस्सा नहीं करता, वो ऐसे नहीं आपे से बाहर हो जाता। फिर आप देखिए कि मर्द की ख्वाहिश होती है कि बीवी उसके पास हो, अनमैरिड है तो उसका दिल करता है शादी हो जाए, या शादी शुदा है तो उसका दिल करता है बीवी हर वक्त मेरे इर्द गिर्द बैठे, मेरी बातें सुने मेरी, लेकिन नहीं मिलती। लेकिन आपके लिए अल्लाह कोई और बरकत का सामान बना देता है। बीवी से तो हो सकता है कि औलाद मिल जाती, कुछ और मिलता, बीवी चली गई दुनिया से, अल्लाह ने आपको फारिग कर दिया, अल्लाह ने आपको किसी अच्छे काम में लगा दिया, ऐन मुमकिन है। और किसी नौकरी के छिन जाने में भी बरकत हो, अल्लाह ना करे किसी की नौकरी छिने, क्योंकि जब नौकरी छिनती है ना तो अमूमन ईमान ही चला जाता है, इल्ला माशाल्लाह। अब क्या हुआ, नौकरी गई, आप कहते खाए खाएंगे कहाँ से, पियेंगे कहाँ से, तो एक जुमला लिख लीजिए, नौकरी नहीं खिलाती, दुकान नहीं खिलाती, फैक्ट्री नहीं खिलाती, गाड़ी नहीं खिलाती, रिस्क अल्लाह देता है, वल्लाहु हुवल खैरुर राज़िकीन। ये तो असबाब है, अल्लाह कहता है ये गाड़ी नहीं लेके निकला है ना, जाओ फरिश्तों इसको रोज़ी दे दो, ये मुसाफिरों को लेने के इंतज़ार में खड़ा, जाओ इनको रोज़ी दे दो। तो रिस्क फिर अल्लाह ही की तरफ से आता है। पत्थर दरख्त से ज़्यादा कवी है, लोहा पत्थर से ज़्यादा, आग लोहे से ज़्यादा, हवा आग से ज़्यादा, और ईमान तेज़ हवा से भी ज़्यादा कवी है। यह असल में एक हदीस का खुलासा है, बहुत ही प्यारी बात, कि दुनिया की सबसे मजबूत चीज़ क्या है। कोई कहता है पत्थर, नहीं, पत्थर को आग में रखे तो वो भी पिघल जाए। आप कहते हैं दरख्त मजबूत है, नहीं, आग दिखाइए लकड़ी जल के राख हो जाएगी। आप कहते हैं लोहा बड़ा मजबूत है, आप उसको तेज़ टेम्परेचर पे उसको गर्म कीजिए तो वो भी पिघल जाएगा, लोहे का भी यही हाल है। हवा तेज़ है क्योंकि बड़ी से बड़ी आग जो इतनी चीज़ों को पिघला रही थी, आग को हवा ने ठंडा कर दिया। हाँ, ईमान तेज़ हवा से भी ज़्यादा कवी है, हम नहीं समझते इसको वैसे, लेकिन ये सच है। सच्चे ईमान के साथ वो काम हो जाते हैं जो के वैसे नहीं होते। ईमान की करेंसी बहुत सारी जगहों पे काम आती है और रुके हुए काम हो जाते हैं। जैसे 313 का ईमान था ना, कि 1,000 के मुकाबले पे अल्लाह ने उनको फतह दे दी। तुमको जो भी मुसीबत पहुँचती है वो ना भुलाया जाने वाला सबक है, जो जहन में महफूज हो जाता है वो हाफ़ज़े में सब्त हो जाने वाली नस है। क्या पता चला? इसका एक आसान सा जुमला बोल दूँ, मुसीबत उस्ताद है अगर आप उससे सबक ले लें। यानी जब ज़िंदगी में कोई मुसीबत पहुंची, उसका सबक ना भूलिए। मुराद ये है कि ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात और परेशानियों से सबक सीखिए और फिर इसको जहन में महफूज कीजिए, अपने हाफ़ज़े में सब्त कर दीजिए, तो इंशाल्लाह हर मुसीबत के बाद आपके दर्जे भी बुलंद होंगे और आप पहले से क्वालिफाइड होते होते आगे जाएंगे। अल्लाह ताला हमें छोटी बड़ी मुसीबतों और मुश्किलात से कुंदन बनाकर निकाल दे। कामयाबी आजमाइश, ज़ख़म रुकावट, आफत वगैरह के कतरों का नाम है, और नाकामी गुमनामी कसलमंदी आजजी ज़िल्लत और ख्वारी के चंद कतरात हैं। कामयाबी किन चीज़ों में फंसी हुई है? आजमाइशें आएंगी, ज़ख़म सहने पड़ेंगे, रुकावटें आएंगी जिसको आपने फेस करना है, आफतें भी आएंगी, लेकिन इसके बाद खैर ही खैर होगी, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ होंगी। नाकाम कौन है? नाकामी गुमनामी कसलमंदी, यानी ऐसे बंदे में कोई जोश व खरोश ही नहीं है, सुस्ती उसके अंदर भरी हुई है और आजिज़ ही रहता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, हाय नहीं मैं आजिज़ हूँ, मेरे पर नज़र ना रखिए, मैं पुरुमीत नहीं हूँ। फिर ज़िल्लत और ख्वारी, ये चंद चीज़ें मिलती हैं तो नाकामी, आप इसको ऐसे कह लीजिए कि इंग्रीडियंट्स ऑफ सक्सेस एंड इंग्रीडियंट्स ऑफ फेलियर। और ज़िंदगी में कुछ लोग सिर्फ शिकवे करते दिखते हैं, असल में पीछे किरदार वो नहीं होते, शख्सियात वो नहीं होती। तो अपने लिए ख़ुद फैसला कीजिए कि मैं अपने आप को किन लोगों में खड़ा करना चाहती हूँ, बस वो खूबियाँ अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। जो आर्जी शोहरत चाहता हो और अच्छी तारीफ के साथ दायमी जिक्र ना चाहता हो, जो इल्मे नाफे और अमल साले से ही हो सकता है, तो वो सीधा सा बेहौसला आदमी है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। यानी किसी इंसान के बेहौसला होने की दलील क्या है? कि उसका दिल ही नहीं करता कि मेरे बाद लोग मेरा जिक्र खैर करें। वजह अली लिसान असद किन फिल आखिरीन, आर्जी शोहरत है, पंपी ग्लैमरी इतने हिट्स, इतने मेरे फॉलोअर, इतने मेरे फैन, क्या मिलेगा आपको? कभी सोचा आपने? यानी आपको अगर 1,000 लोग जानते हैं या आपको 1,00,000 जानने लगेंगे, आपको क्या मिलेगा? सर में दर्द हो गया तो ठीक नहीं होगा, भूख लगी भी है तो पेट नहीं भरेगा। दुआ ये कीजिए कि अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह वो दुआ हमारे हक़ में कबूल कर ले कि वजअली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन। तो आप इल्मे नाफे लीजिए, अमल साले कीजिए, इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ें आपके साथ होंगे। थोड़ा सा हौसला करना पड़ता। और अल्लाह के नबी का एक खूबसूरत जुमला भी एक रास है खुशी का, क्या लिखेगा? ऐ बिलाल, नमाज का ऐलान करो और हमें राहत पहुँचाओ। या बिलाल, अरेहना बिस्सलात। क्योंकि सकीनत का दरिया, अमन की नहर और दिल पर चलने वाली ठंडी और पुरसकून हवा है जो खौफ और हुज़न की आग बुझा देती है। क्या पता चला कि नमाजों में सुकून है। जो नमाजी भी हैं और बेसकून है ना, उनको ज़रा सी रिवाइवल की ज़रूरत है। इसलिए कि जब तक आपका दिल मुतमईन नहीं, आपके अंदर अमन नहीं, पीस नहीं है, आपका दिल बेचैन है, नमाज पढ़ने के दौरान और नमाज पढ़ने के बाद आपका दिल इतना पुरसकून हो कि आपको लगे कि जैसे मछली पानी में चली गई तो उसको सुकून मिल गया। अगर रब की मासीयत नहीं की, ना किसी पर जुल्म किया हो, तो फिर सुकून से सो जाओ। तुम्हारी मेहनत कामयाब और नसीबा खुला है, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं। लिखे इसको। हाँ, मासीयत यानी गुना, नफरमानी, इसियान, ये अगर आपने नहीं किया हुआ, और दूसरी बात, किसी पे जुल्म नहीं किया, इरादे से जानते बूझते अनजाने में हर तरफ वेरी केयरफुल रहें कि मैंने किसी पे जुल्म नहीं करना, आप इसके बाद आपको फिक्र की ज़रूरत नहीं, सुकून रखिए, आप पुरसकून हो जाएं, मेहनत भी कामयाब होगी और नसीब भी खुलेगा, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए कि अमूमन हम कहते हैं ना, फ़लाँ मेरा दुश्मन, फ़लाँ ने मेरे ख़िलाफ़ बात कर दी, फ़लाँ ने उसको ये कह दिया, वो कह दिया, ठीक है, उसका नतीजा क्या होगा कि आप अगर किसी पे ज़्यादती नहीं कर रहे ना, तो फिर आपको मुतमईन रहना चाहिए, इंशाल्लाह आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। मुबारकबाद ऐसे आदमी के लिए जो सोए तो लोग इसी के दुआगो हों, और बर्बादी है उनके लिए जो सोएं तो लोग इनको बददुआ दें। खुशखबरी इसके लिए जिससे दिल प्यार करें, और खसारे में है वो जिस पर लोग लानत भेजें। नोट कीजिएगा इसको। अपने आप से पूछते हैं, क्या लोग मुझे दुआएं देते हैं कि मेरे लिए बदगो हैं? कहीं मुझे लोगों से बददुआएं तो नहीं मिलती? क्या लोग दिल से मुझसे प्यार करते हैं या दिल से मेरे ऊपर तुफ करते हैं? खुशकिस्मत है वो लोग, और आप लोगों के नफ़े के बनिए, फिर आप देखिए कि लोग आपको कैसे दुआएं देंगे। आज भी दुनिया में इवन न्यूटन को या आइंस्टाइन को ले लीजिए, वो गैर मुस्लिम थे, या अलेक्जेंडर को देख लीजिए, जिन्होंने भी कोई इन्वेंशन की, आज इंसानियत उनके लिए दुआएं करती है। तो दीन का कोई फ़ायदा कर दीजिए या दुनिया का कर दीजिए, आप लोगों की दुआओं का हिस्सा बन जाएंगे। अगर दुनिया की अदालत में अदल ना मिले, तो अपना मुकदमा आखरत की कोर्ट में दायर करो कि वहाँ के गवाह फरिश्ते होंगे, दावा महफूज रहेगा और जस्टिस खुद अहकमुल हाकिमीन होगा। बहुत बड़ी बात है ये, है जो दिन में कम से कम 17 बार कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। दुनिया की हर अदालत में अदल नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें आखरत की कोर्ट में जाकर फाइनल होंगी। दुनिया में हो सकता है झूठ सच हो जाए, झूठे गवाह, झूठे वकील, झूठे जज, लेकिन वहाँ सब सच है, वो अलहक की अदालत होगी, वहाँ के दावे महफूज हैं, कोई उसके ऊपर कुछ और कोई प्ली नहीं लेगा। और दुनिया के जस्टिस, वकील, जज हो सकता है किसी के दबाव में आ जाएं, कोई माल की रगबत हो, लेकिन मालिक यौमिद्दीन कभी भी जुल्म नहीं करेगा। और फिर एक खूबसूरत राज, फज़कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। अगर ज़िक्र का सिर्फ इतना ही फ़ायदा होता तब भी काफ़ी था, और अगर इसका सिर्फ इतना ही नफ़ा होता कि रब्बे ताला तुम्हें याद करेगा, तब भी क्या ही नफ़ा है और कितने शर्फ की बात है। सूरत बकरा की आयतें फज़कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून क्या बताती है कि सिर्फ ज़िक्र से इतना ही फ़ायदा हो जाए ना, कि इधर आप अल्लाह को याद कर रहे हैं, उधर अल्लाह आपको याद कर रहे हैं। आप तन्हाई में करते हैं, अल्लाह तन्हाई में करते हैं, आप अपने नफ्स में करते हैं, अल्लाह अपने जी में करता है। आप एक महफिल में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह फरिश्तों की महफिल में करे, तो फिर और कोई भी फ़ायदा ना हो तो ये फ़ायदा ही बहुत बड़ा है। ज़रूरत है इस बात की कि आप इसको महसूस करें। तुम्हें खुशखबरी हो कि पाकी ईमान का हिस्सा है, इससे गुनाह ख़त्म होते हैं, बुराइयाँ धुल जाती हैं और तुम्हारी तत्खीर करती है यानी प्यूरीफाई करती है तुमको, ताकि मौला ताला से पाक साफ होकर मिलो। क्या पता चला कि पाक रही है, क्लीन रही है, प्योर रही है, आपका ईमान पक्का ही तब होगा। गुनाह ख़त्म होंगे, बुराइयाँ धुलेंगी और इंसान अंदर से बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। ज़रा सा सोचिए, आप किसी को मिलने जाते हैं तो ऐसे ही उठ के चल पड़ते हैं, पसीने से भरे हुए, गंदे मंदे, मट्टी से भरे हुए, सड़ांध आती है। नहीं, आप कहते मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, ये अखलाक के ख़िलाफ़ है, ये बद तहजीबियत है। साफ़ सुथरे होके अपनी तौफीक के मुताबिक जो भी है आप पहन ओढ़ कर जाते हैं, क्योंकि आप इज़्ज़त देते हैं दूसरे को। आप किसी को बुलाएं और आपके घर में आए और बाल उड़े हुए और कपड़े बदबूदार और होश ही नहीं, आप कहेंगे इनको खुशी नहीं है मेरे घर आने की, ये किस हाल हुलिया में उठकर आ गई। तो जब अल्लाह से मिलना हो, मन अहब लिक़ाल्लाह अहब अल्लाह लिक़ा हो, तो फिर उसके लिए यही ख्वाहिश रखिए। तुम्हें खुशखबरी हो कि नमाज माँ कबल के गुनाहों का कफारा है, मौजूदा को मिटा देती है, बाद की ज़िंदगी की इसलाह करती है, नमाजी को कैदो बंद से छुड़ा देती है, नमाज आँखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। पिछली ज़िंदगी के गुनाह सोचिए, चलिए आज से पीछे जाइए, आज सुबह का, आज दोपहर का, कल रात, कल शाम, कल दोपहर, कल सुबह, ऐसे सोचिए, क्योंकि हमें तो गुनाह अपने बड़ी जल्दी भूल जाते हैं ना, तो लेटेस्ट गुनाह ही को याद कीजिए, चंद सेकंड सोचिए, और जितना शोर बुलंद होगा ना उतने आपको अपने गुनाह ज़ुबानी याद होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं चलता, याद रहते हैं। चलिए उनको सोचकर जहन में, किसी का दिल तोड़ा, किसी को बुरा कहा, किसी की बुराई की, गीबत की, किसी के खिलाफ बदगुमानी कर दी, किसी का दिल तोड़ दिया, पिछले गुनाह आपके माफ़, इस वक्त सोचिए क्या गुनाह हो रहा है मुझसे, ये भी मिट जाएंगे और आने वाली ज़िंदगी की इसलाह होगी। मन असलाह का लफ्ज़ कुरान पाक में है, तो कह लीजिए कि नमाजी पिछले हाल के और मुस्तकबिल के सारे गुनाहों से पाक कर दिया जाता है, क्योंकि नमाज आंखों की ठंडक है। जो आदमी ये चाहे कि बगैर तनकीद झीले वो सब का एहतराम पा जाए, तो वो अक्सर महरूम और मोहताज ही रहता है। शोहरत के पीछे भागने वाला सआदत का दुश्मन है। जी, आप पर तनकीद होगी, नामुमकिन है कि ना हो, करने वाले तो अल्लाह पर भी तनकीद करते हैं, रसूलों पर कितनी तनकीद हुई। आयमाए कराम मुहद्दिसीने कराम को देखिए, फ़ी ज़माना दौरे हाज़र के उलमाए कराम पे कितनी तनकीद होती है, सियासी रहनुमाओं पे कितनी तनकीद होती है, हर फील्ड में तनकीद होती है। सही है, अपना मुहासबा कीजिए, तनकीद के बाद एहतराम ज़्यादा मिलता है, क्योंकि तनकीद के बाद आपका रिएक्शन शो करता है कि आप क्या कर रहे हैं। और जिसके पीछे कोई है ही नहीं तनकीद करने वाला, ऐसा शख्स अमूमन महरूम रहता है। लोग शोहरतों के पीछे भागते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ें करें, हालांकि जो लोग आप पे तनकीद करते हैं वो आपके ज़्यादा बड़े मुहसिन हैं। तो घरेलू ज़िंदगी में, ससुराली ज़िंदगी में तनकीद को बर्दाश्त कीजिए। बस लोग कहते हैं मेरी सास खुश नहीं होती, बस कहते हैं मेरे शोहर खुश नहीं होते, बस कहते हैं हमारे टीचर खुश नहीं होते, बस कहते हैं हमारे स्टूडेंट खुश नहीं होते। अच्छी बात है, अगर वो खुश हो गए ना तो आप भी ठंडे होकर बैठ जाएंगे। खुशी के फ़न में सिर्फ असबाक और नज़रियात काफ़ी नहीं, बल्कि इनके मुताबिक हरकत व अमल और तसरुफ भी ज़रूरी है, जैसे कि रोज़ 1 घंटा पैदल चलना, सफ़र करना, पार्क जाना। क्या पता चला खुशी का फ़न क्या है? देखिए ना, आप सबक पढ़ रहे हैं, किताब खोली, चलिए पहला सबक, दूसरा सबक, बड़ा एक रिवायती अंदाज़ है ना, थियोरेटिकल है ये कह लीजिए, यानी सिर्फ थियोरेटिकल चीज़ों से खुशी नहीं मिलती, बल्कि अमल भी तो कीजिए। जैसे आजकल हम खुश रहने के राज सीख रहे हैं, अब आप सुन लें लेक्चर, आप इस सीरीज़ को जाएं और फॉलो करें, तो क्या आप खुश रहेंगे? नहीं, आपको फिर इन बातों पे अमल भी करना पड़ेगा। आपको अपना अमल, अपना तसरुफ, अपनी हरकत व सकनात इन बातों के मुताबिक चेंज करनी पड़ेंगी। मच्छर अक्सर शेर के पीछे पड़ते हैं और इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो इनको अहमियत नहीं देता, ना इनकी तरफ तवज्जो करता है, क्योंकि इसके मकासद और हैं और इन्हीं पर तवज्जो देता है। सुभान अल्लाह। अब आप सोचिए, अगर आप मच्छरों के साथ उलझने लग जाएं तो मच्छरों का क्या बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा। तो तो छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को वजह नहीं बनाते, इनको जाने दीजिए, पीछे डालो, क्योंकि ज़िंदगी में जब बड़ा मकसद सामने होता है ना, तो फिर आप उसको लेकर जीते हैं। नखुसत मानने वाले से बचो, क्योंकि तुम इसे गुलाब का फूल पेश करोगे, वो इसमें कांटा देखेगा। तुम इसे पानी दोगे, वो इसमें से तिनका निकालेगा। तुम इससे सूरज की तारीफ करोगे, वो धूप की तेज़ी की शिकायत करेगा। जी, कुछ लोग होते ही नेगेटिव है, बात करेंगे लठमार, तारीफ भी करेंगे तो ऐसे लगता है कि जैसे अंदर जलाओ पंथ कर लिया, हो गया, खा लिया, बुला लिया। ये टोन, इसको बदलिए, क्योंकि वही बात है कि जिसको नहीं बात समझ आनी, वो फूल लेकर भी कहेगा है फूल कैसा दिया, नीचे इतने कांटे थे, ये देखो पानी तो दे दिया, इसके अंदर ये कुछ पड़ गया इसमें। यानी वो हमेशा तारीख पहलू और नेगेटिव पहलू चीज़ों का देखते हैं। क्या तुम वाकई खुशबख्ती चाहते हो? इसे दूर मत ढूंढो, वो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारी नई सोच में, खूबसूरत ख्याल में, पुख्ता इरादे में और खैर से भरे दिल में है। आप खुशबख्त बनना चाहते हैं? खुशबख्त तो इंग्लिश में लोग कहते हैं गुड लक, हालांकि लक नहीं है, ब्लेस्ड कहिए। आप अपने आप को खुशकिस्मत बनाना चाहते हैं? तो कहाँ से मिलेगी? दूर से नहीं, आपके अंदर होगी। नई सोच लाइए, अपने ख्यालात खूबसूरत कीजिए, दिल मिल यकीन को पुख्ता इरादे में बदलिए और दिल दूसरों की खैर से भर दीजिए। दोबारा लिखवाती हूँ, सोच नहीं कीजिए, ख्याल खूबसूरत कीजिए, इरादे पुख्ता कर लें और खैर से दिल को भर लें। आप खुशकिस्मत है माशाल्लाह। नेक बख्ती ऐसा इतर है जिसे तुम अपने इर्द गिर्द छिड़कोगे तो इसके कुछ कतरात तुमको भी मिलेंगे ज़रूर। कैसे? यानी इतर आप देखिए किसी को भी देंगे ना, या कोई दूसरा भी लगाएगा तो आप तक उसकी ज़रूर खुशबू आएगी। तो अगर आप नेक बख्त है ना, तो आपकी नेकी ज़रूर दूसरों तक पहुँचेगी। हमारी मुश्किल ये है कि हम गैर अल्लाह से दिन में 100 बार डरते हैं। ताखीर का डर, गलती करने का डर, जल्दी मचाने का डर, फलां के गुस्से और फलां के शक्को शुबे का डर, 100 तरह के डर हैं जो हमारे दिल में बसे हैं। ये गैर अल्लाह कौन है? माँ सिवा अल्लाह, अदर देन अल्लाह। लोगों का डर, चीज़ों का डर, बेजान चीज़ों का डर, रवैयों का डर। आप एक दफ़ा इन चीज़ों से अपने आप को बेनियाज कीजिए, आप देखिएगा कि आपका दिल मुतमईन होगा, कल्बे सलीम बनेगा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हर मुसर्रत जायल हो जाती है, लेकिन साथ ही ये भी समझते हैं कि हर तकलीफ़ दायमी है। यानी वो सुरूर की मौत के कायल हैं लेकिन गम की मौत के कायल नहीं हैं। अल्लाह अकबर। बी पॉजिटिव, ये मुराद है। आपने क्यों फैसला कर लिया दुखी रहने का और दुखी रखने का? क्यों आप जले कुटे रहते हैं? आप क्यों हर वक्त परेशान रहते हैं? आप क्यों सोचते हैं कि अब ज़िंदगी में मेरे कोई खुशी नहीं है? हर तकलीफ़ मुझे, हर बीमारी मुझे, हर गम मुझे। नहीं, आप कहिए खुशियाँ हैं, कुछ गम भी हैं, पर मुझे नहीं लगते। यानी अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि खुशी और गम से ऊपर पहुँच जाए इंशाल्लाह। हम में से बाज़ अंधी मछली की तरह हैं जो छोटे से बर्तन में होती है लेकिन समझती है कि समंदर के अंदर है। चुनाचे हम पैदा हुए ईमान की दुनिया में लेकिन अपने आप को खौफ, अंदेशा, अदावत और हुजन के पहाड़ों की खाई में गिरा दिया। इमेजिन कीजिए, यानी बड़ी सी मछली है लेकिन बर्तन छोटा है, और मछली भी ऐसी जिसको दिखता कोई नहीं, अंधी होती है। आप जानते ही होंगे कुछ मछलियाँ वाकई अंधी होती हैं। अब वो मछली जिसको अपना इर्द गिर्द दिख ही नहीं रहा, इतना पता है कि मैं पानी में हूँ, तो कहती है लो मैं तो समंदर में हूँ। ऐसे ही है ना? वैसे तो अच्छी बात है, छोटी सी जगह में, लेकिन आप कहते हैं मैं तो बहुत बड़ी जगह में हूँ। बिल्कुल इसी तरह ईमान की दुनिया में हम पैदा हुए लेकिन अपने आप को खौफ और अंदेशे और अदावत और हुजन के पहाड़ों की खाई में गिरा दिया। मुराद क्या इससे? कि ईमान ज़ाया हो जाएगा आपके खौफ और अंदेशे और इस तरह की नेगेटिव चीज़ों से। मुराद ये है कि थोड़े से रिसोर्सेस में भी खुश रहिए। है आपके पास थोड़ा, दूसरों को लगे आपके पास बहुत है। ज़िंदगी की हकीकी खुशी कीमती है लेकिन वो मुस्तहक ही को मिलती है। लिहाजा जो हंसती खेलती ज़िंदगी में रोते हैं, उसकी मुस्कुराहटों के बीच दांत पिसते हैं, वो खुशी के मुस्तहक कहाँ? यानी सच्ची खुशियाँ सिर्फ उनको मिलती हैं जो खुश रहना जानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छी खासी ज़िंदगी है, सब कुछ है, रोते ही रहते हैं, ना शुक्र अनग्रेटफुल, दुखी। अब वो कभी कभी मुस्कुराते हैं ना, तो उनके अपने ही दांत उनकी जुबान को काट देते हैं, या उनके दांत पिस रहे होते हैं। तो मुराद फिर वही है कि सच्ची खुशियाँ उसी को मिलेंगी जो रोना नहीं, हंसना जानता है। एक शिकारी ने फाख्ता को पिंजरे में कैद कर दिया तो वो गाने लगी। शिकारी बोला, क्या ये तेरे गाने का वक्त है कि रोने का? सुनिएगा, पिंजरे में कैद फाख्ता रोएगी कि गाने गाएगी? वो तो रो रही नहीं, गा रही है। कहने लगा, तू क्यों खुश है? तुझे तो रोना चाहिए कि मैंने तुझे कैद में डाल दिया। बोली, हर साथ आज़ादी की मुंतजर हूँ, इसलिए गा रही हूँ। ये है ऑप्टिमिज्म। बी पॉजिटिव। ऑप्टिमिज्म इंसान की ज़िंदगी में जब आ जाता है ना, तो दो नेगेटिव्स को मिलाकर एक पॉजिटिव कर देता है। सिर्फ उसकी ज़रा सी तरतीब इधर उधर से बदलने की ज़रूरत होती है। दो डंडियाँ हैं ना, उसको सीधा कर देंगे, एक के ऊपर दूसरा कर देंगे, तो वो पॉजिटिव बन जाएगी चीज़। बातें तो ये बहुत बड़ी बड़ी हैं, दुआ करिए कि हमारे दिल में उतर जाए, अपने ऊपर लें। मैं कैसी हूँ? हर वक्त रोती रहती हूँ, दुखी, शिकवे। मियाँ ऐसा, सास ऐसी, भाई बहन ऐसे, बच्चे तो बिल्कुल ठीक नहीं, मेट भी ऐसी मिली, घर भी ठीक नहीं। कुछ लोगों को देखकर ऐसे लगता है ये गम के पटारे हैं। वहशत होती है ऐसे लोगों से, कभी सामना भी ना करना पड़े ऐसे लोगों से। ख्वाहिश ये होती है तो खुश रहिए। आपके पास करोड़ों से अच्छी ज़िंदगी है और आप रोना रो रहे हैं अभी भी। आप अपने ऊपर लीजिए, आप अपने बच्चे की 10 बातें माने, एक ना माने, और वो उसी पे रोता रहे, आपने तो मेरी कभी मानी नहीं। तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा आपको। अल्लाह ताला को ऐसे लोग कहाँ अच्छे लगेंगे। एक हकीम से कहा, क्या तुम सुल्तान के पास क्यों नहीं जाते? वो तुम्हें सोने की थैलियाँ देगा। कहा, मुझे डर है कि जब नाराज़ होगा तो मेरा सर काट देगा, और इन्हीं थैलियों में किसी में रख कर मेरी बीवी को हदिया देगा। सुभान अल्लाह, वाकई हकीम था ना। यानी बादशाहों के पास रहने वालों को अगर मुरात मिलती हैं, इनाम इकराम और उस हीरे जवाहरात मिलते हैं, तो बादशाह के पास इख्तियार है, वो गर्दन भी तो काट देगा ना। तो फिर क्या होगा, क्या मिला उससे? मुराद ये है कि सिर्फ किसी से ज़ाती फ़ायदे हासिल करने के लिए उसके करीब नहीं रहना चाहिए। कुत्ते का भौंकना तो सुनते हो, कबूतर का नगमा क्यों नहीं सुनते? रात का कालापन देखते हो, चांद सितारों के हुस्न पर नज़र नहीं जाती? शहद की मक्खी के कांटे की शिकायत करते हो, शहद की मिठास भूल जाते हो? अल्लाह अकबर। अब देखिए, रात तो एक ही है ना, अब काली रात में कुत्ते भी भौंकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ कबूतर भी रात को गाने गाते हों। इस बात से तो यही लग रहा है। और आप कहते हैं रात काली, अंधेरा, लेकिन रात काली ना हुई तो ये चांद और सितारा इतना खूबसूरत कैसे लगेगा? आप कहते शहद की मक्खी ने काट लिया, हाय दर्द हुई, लेकिन यही मक्खी तो आपको फूलों के रस में से शहद की मिठास भी तो देती है ना। फिर क्या, काट ले, शहद भी तो देती है। ज़िंदगी में ये किया करें, किसी बंदे से कोई दुख तकलीफ़ आए ना, आप कहा करें कोई बात नहीं, खुशी भी तो इसी से मिलती है। चलो आज नहीं माना, कल तो मान जाएगा ना। आज नहीं ये बात पूरी की, कल तो कर दी, कोई बात नहीं, हर वक्त कौन कर सकता है। इस तरह खुद को खुश रखिए, आप देखेंगे आपके ताल्लुकात सबसे अच्छे हो जाएंगे। और जिसके ताल्लुकात इंसानों से अच्छे हो गए, तो अल्लाह ताला को मनाना भी और उसको राज़ी करना भी आसान होगा। तुम्हारे बाप आदम ने गुनाह से तौबा की तो अल्लाह ने इन्हें मुंतखब किया, हिदायत दी, इनकी सुलब से अंबिया, शुहदा, उलमा और औलिया निकाले। चुनाचे गुनाह से पहले के मुकाबले में भी बात में ज़्यादा आला हो गए। जी देख लीजिए, चुने गए आदम अलैहिस्सलाम। बड़े से बड़ी ख़ता के बाद भी चुने जाने के इम्कानात होते हैं, इसलिए डोंट लूज़ होप। नूह अलैहिस्सलाम ने फरियाद की, तूफ़ान लावे की तरह फूट रहा था। उन्होंने या रहमान या मन्नान की निदा दी। लम्हा भर में अल्लाह की मदद और नुसरत आई और वो कामयाब हो गए। जो कुफर करने वाले थे वो धोखे और खसारे में पड़े रहे। अब आप देखिए कि हज़रत नूह पर कितनी आजमाइशें आईं। चलिए, एक तो 950 साल अल्लाह के रास्ते में रहे ना, वो तो उनको अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि उनको नहीं बोझ लगा। जब ये बंदा काम करता है तो उसको ये बोझ नहीं लगता, बल्कि नेमत लगता है। लेकिन वो जो तूफ़ान आया था, इनको तो नहीं पता था ना कि मैं बच जाऊँगा, इल्ला ये कि अल्लाह के वादों पर यकीन था। वो जो तोड़ फोड़ हुई, जो सैलाब आए, आखिर ये भी तो उसी में थे ना। लेकिन आप देखिए, अल्लाह ने उस बड़े बड़े तूफ़ानों से निकाल दिया। और बेटा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, यासिबुनी मिनल माई, वो पानी से बचा लेगा। वो डूब गया। तो क्या पता चला कि जब भी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान आए तो या अल्लाह, या रहमान, या मन्नान, ए रहम करने वाले, एहसान करने वाले, उसको पुकारिए, देखिए वो कैसे आपके लिए आता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर के अंदर तीन तीन अंधेरों में थे। उन्होंने फौरी तौर पर रहम की अपील भेजी जिसमें कोताही का एतराफ़ और एतज़ार था। एतज़ार कहते हैं उज़र को। चूँकि इनका तार दुरुस्त था इसलिए मदद भी बिजली की तरह की गई। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। ये है एतराफ़ जो अल्लाह को पसंद है। अंदर से टूटिए, अंदर से ख़ुद को कहिए कि मैं ज़ालिम हूँ, मेरे से गुनाह फिर भी हो जाते हैं, मेरा ही कसूर है, किसी को नहीं दिखा मुझे क्यों दिखा, किसी के साथ नहीं हुआ मेरे साथ क्यों हुआ। बस फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला मछली के पेट से भी निकाल लेगा और अल्लाह सबको गमों से बेनियाज कर दे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी ख़ताओं को आंसुओं से धोया, इनकी तौबा का कपड़ा सफ़ेद हो गया, वो कपड़ा मेहराब में इबादत बनाया गया, बुनने वाला अमीन था और सहर खेजी के आंसुओं से धोया गया। क्या पता चला, एक वाक्या है कुरान पाक में हज़रत दाऊद की तरफ निस्बत है, उसी की तरफ इशारा इधर भी, कि ज़रा सा हिंट मिला और अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को हिदायत बयानी दे दी। यानी एक ऐसा मंज़र क्रिएट कर दिया कि हज़रत दाऊद को अपनी ख़ता या अपनी ग़लती समझ आ गई, अल्लाह ने उनके दर्जे बुलंद कर दिए। तो कभी कभी दूसरों के हाल से भी आपको अपने हाल की बेहतरी की राह नज़र आती है। जब मामला सख्त हो जाए, तकलीफ़ बढ़ जाए, मायूसी हो जाए, तो कुशादगी का इंतज़ार करो। ये हदीस का ख़ुलासा भी है, इज़ा दाक़त अल-अम्रु, बल्कि अरब मुहावरा कह लीजिए तो वो भी है, वही ज़्यादा बेहतर है, कि यानी अरबों में ये मशहूर बात है कि इज़ा दाक़त अम्रुन, दाक़ यदीक उदीक़ दयक, वही है जिसको आप दुआत से यानी ज़ाक़ कहते हैं, यजीक सदरी का लफ्ज़ आता है। यानी कभी कभी ज़िंदगी में मामले इतने सख्त हो जाते हैं, स्टबन हो जाता है बंदा, तकलीफ़ पड़ जाती है और फिर बंदा मायूस होता है, बस समझ लीजिए उसके बाद खैर है। मैं इसको कैसे समझती हूँ, ब्लड प्रेशर चेक करने में। आप देखिए कि प्रेशर डाला जाता है, डाला जाता है, डाला जाता है, ऐसे लगता है कि जान निकल जाएगी, आप रगे फटेंगी और एकदम रिलैक्स कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह बास मुश्किलात हमारा ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आती हैं, स्टेमिना कितना है, टैलेंट कितना है। तो बस फिर बहुत दुख है अगर, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने आपके लिए कुशादगी के मामले कर दिए। अगर ये चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी तकलीफ़ दूर करे, तो हर मखलूक से छोटी हो या बड़ी उम्मीद काट लो, उम्मीदों की डोरियाँ लोगों से काट लीजिए, चाहे वो छोटी मखलूक हो या बड़ी मखलूक हो, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखो और इसी से फरियाद करो। बस ये छोटी सी बात याद रखिएगा। तुम्हारा नफ्स इस सयाल की तरह, सयाल कहते हैं लिक्विड को, माया, जो बर्तनों को अपने रंग में रंग देता है। नफ्स राजी और मुतमईन है तो सादत, खैर और जमाल देखोगे। अगर तंगदिल और नखुसत पसंद है तो शिकावत, शर और बुराई का सामना होगा। यदि अगर नफ्स अमारा है तो सारा दिल काला हो जाएगा, और नफ्स लवामा को गालिब कीजिए तो दिल सफ़ेद हो जाएगा, और नफ्स मुतमईना बन जाएंगे तो दिल बागो बहार हो जाएगा। तो राज़ी रहिए, तंग दिली ना दिल में डालिए, कंजूसियाँ छोड़ दीजिए, बुखल छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि सब आप से प्यार करने लग जाएंगे। जब माबूद की इताअत करो, मौजूद पर राज़ी रहो, मफकूद पर सब्र कर लो, तो मकसूद को पालोगे और हर मतलूब पूरा हो जाएगा। अभी मैं चार पांच लफ्ज बोलूंगी तो आपने अपने नोट्स में एक ही लेन की सीध में नीचे लिखने हैं कि एक के ऊपर दूसरा आ जाए। माबूद, मौजूद, मफकूद, मकसूद, मतलूब। जब माबूद की इताअत करें, अल्लाह की इताअत करें, जो मौजूद है उस पर राजी रहिए, जो मफकूद है, जो है ही नहीं, खो गया या है ही नहीं था, तो सब्र कीजिए, तो मकसूद को पालोगे, यानी जो असल मतलूब चीज़ थी, मुराद है कि जो तलब करते थे अल्लाह वो देगा। अल्लाह करे कि ये राज हमें समझ आ जाए। और ये कुलिया ज़िंदगी के हर मैदान में चलता है। जिस शख्स के सीने में ईमान और ज़िक्र का बाग लगा है, इल्म व तजुर्बात की तैयारी है तो वह दुनिया के माफात पर अफसोस ना करे। माफात क्या? फौतशुदा चीज़ें। माफात तकुम सूरह हदीद में भी आता है, 27 पारे की आखिरी सूरत है। मुराद के कि आपके सीने में ईमान और ज़िक्र का बाग लगा ही रहे और साथ ही साथ आप इल्म में पढ़ रहे हैं और तजुर्बों की खूबसूरत सी फसल तैयार हो रही है, तो फिर दुनिया में अगर कुछ चला गया तो अफसोस ना कीजिए। जो इस वक्त तक खुश ना हो, जब तक गुमशुदा वापस ना आए, घर ना बने, मुनासिब नौकरी ना मिल जाए, तो वो शराब के पीछे दौड़ रहा है, वो बेदारी में ख्वाब देखता है। मतलब यह कि सब कुछ नहीं ठीक होगा, कुछ न कुछ कमी इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में रहेगी। बचपन देखिए, माँ बाप के घर पे थे, जवानी में शौहर के घर पे आ गए, बुढ़ापे में आप बच्चों के सहारे पे खड़े हैं, कमी तो रहेगी। आप दुनिया को जन्नत नहीं बना सकते, ये दुआ कीजिए कि वहाँ की जन्नत से महरूम ना हो जाए। सादत ये है कि जूद हिसी ना हो। जूद हिसी कहते हैं वेरी सेंसिटिविटी, जूद कहते हैं फौरी, जूद हजम कहते हैं ना जल्दी से, ज़्यादा या जूद उजाई, और हिसी क्या होते हैं सेंसिटिविटी। कुछ लोग इतनी सी बात पे सेंसिटिव, छोटी सी बात का पतंगड़। तवक्कुआत ना बांधी जाएँ, खौफ की चीज़ें उठाकर फेंक दी जाएँ। मुराद ये है कि खुशबख्त कौन है? जो बहुत सेंसिटिव ना हो, बहुत तवक्कुआत भी ना बांधे, और जहाँ जिस चीज़ से खौफ है उसको पीछे कर दे। मुराद ये कि अपनी सोच बदलिए, रिलैक्स रहिए, छोटी छोटी बातों पे दिल मैला ना किया करें। घर नहीं चलते, ज़िंदगी नहीं गुजरती, दो भाई इकट्ठे साथ नहीं रह सकते, शौहर बीवी नहीं रह सकते, एक जगह मिलके काम करने वाले नहीं रह सकते, अगर हर बात आप इफ्स एंड बट्स में ले आएँ तो। मुस्कराहट क्या है? सहरे अफसों तराज, मवद्दत व अख़ूबत का ऐलान, मोहब्बत व सलामती का प्याम, मकबूल सदका, जिससे लगे कि सदका करने वाला राजी, मुतमईन और साबित कदम है। सुभान अल्लाह, यानी आपकी जो मुस्कुराहट है ना, ये सदका। कौन सा सदका? जो कबूल हो जाता है, दूसरों को मशहूर कर देता है, आपके दूसरे के बीच में मवद्दत पैदा हो जाती है, अख़ूबत, आप सब एक लगते हैं, मोहब्बत और सलामती का प्याम होता है। इस तरह वो बदनज़मी और तशवीश से बचने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने कामों का एक चार्ट बनाए, तरतीबो तवाज़ुन और वाकफियत के साथ आमाल का टेबल बनाए। जदवल कहते हैं टेबल्स, ये कहते हैं ना टेबल बनाने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आप मुख्तलिफ टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं वर्ड में। मुराद ये है कि आप अगर मुस्तरब हैं, परेशान हैं, बदनज़मी है, डिसऑर्गनाइज्ड हैं, और आप हर वक्त ही परेशान हैं, चीज़ नहीं मिल रही, बच्चे ने रख दी, किधर चली गई, तो पहले अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज्ड कीजिए। और आखिरी राज आज के सेशन का, जब कोई मुसीबत और आफत आ पड़े तो वक्त गुजारने के साथ इसमें कमी होती जाएगी, क्योंकि जैसे इंसान की उम्र होती है ऐसे ही शिद्दत की भी, यानी इंसान की भी एक उम्र है ना, तो किसी भी मामले में जो शिद्दत बरती जाती है वो भी एक वक्त में बूढ़ी हो जाती है, ख़त्म होती है। मुराद है कि अगर कभी कुछ हो जाए, फिक्र ना कीजिए, कुछ दिन के बाद दिल भी बदल जाएंगे, हालात भी बदल जाएंगे। क्या आपने टूटते हुए घर नहीं बचते देखे? एक एक दो दो तलाक ली दी ख्वातीन को, दोबारा फिर उसी शौहर के साथ बसते नहीं देखा? बस ज़िंदगी का यही असूल है, इसी में राज़ी रहिए कि मैंने इसी दुनिया में जीना है, मेरे साथ यही मामला होना है, मैंने इसी दुनिया में रहते हुए अपने आप को खुश करना है। अल्लाह ताला आपको खुशियों के ये राज नसीब करे, ना सिर्फ ये कि खुद खुश रहें बल्कि दूसरों को खुश भी रखें, और दूसरों से शेयर कीजिए। शेयरिंग इज़ द केयरिंग, क्योंकि जो दूसरों को खुश करेगा अल्लाह उसको भी खुश करेगा। अल्लाह ताला में तासुबात से ऊपर उठाकर खैर लेने और देने वाला बना दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।